ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम छठा स्कंद अध्याय संख्या 18। अध्याय का नाम है राजा इंद्र का वध करने के लिए दिति का व्रत। श्लोक संख्या 27 और 28 बोर्ड पर लिखी है, लेकिन चर्चा हम शुरू करेंगे श्लोक संख्या 23 से श्लोक संख्या 28 तक। तो 27-28 बोर्ड पर लिखे हैं, पहले इसको हम इसको दोहरा लेते हैं। इति भावेन साभर्तु आचचार सकृत प्रियम शुश्रुयानुरागेण प्रश्येण दमेन च भक्त्या परमया राजन् मनो गैरवल्गुभाषिते मनोजग्रह भावज्ञ सस्मता पांगविवीक्षणे इति भावेन साभर्तु चाचार सकृत प्रियम् शुश्रियानुरागेण प्रश्येण दमेन च भक्त्या परमया राजन् मनोगे वल्गुभाषिते मनोजग्रह भावज्ञ सस्मिता पांगुक्षणे। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की इति इस प्रकार भावेन विचार से सा उसने भर्तु पति का आचार संपन्न किया असकृत निरंतर प्रियम प्रिय कार्य शुश्रुष्या सेवा से अनुरागेन प्रेम से प्रश्येण विनम्रता से तमेन आत्मसंयम से च भी भक्त्या भक्ति से परमया महान राजन हे राजा मनोज्ञ मनोहर वल्गुभाषिते मीठे वचनों से मनः उसका मन जग्राहा अपने वश में कर लिया भावज्ञा उसकी प्रकृति को जानने वाली सस्मित मुस्कान से पूर्ण अपांग वीक्षण तिरछी चितवन से। अनुवाद इस प्रकार सोचती हुई इंद्र को मारने के लिए पुत्र इच्छा से दिति निरंतर अपने पति कश्यप को अपने मोहक आचरण से प्रसन्न रखने लगी। हे राजा दिति कश्यप की सभी आज्ञाओं का अत्यंत निष्ठा से पालन करती रही। वह सेवा प्रेम विनय तथा आत्मसंयम एवं अपने मृदु भाषण तथा और अपनी मंद हंसी और बाकी चितवन से कश्यप के मन को आकृष्ट करने लगे और उन्हें अपने वश में कर लिया। तात्पर्य, जब कोई स्त्री अपने पति की परम प्रिय बनना चाहती है और उसकी आज्ञाकारिणी बनना चाहती है तो वह उसे सब प्रकार से प्रसन्न करने का यत्न करती है। जब पति अपनी पत्नी से प्रसन्न होता है तो पत्नी उससे सभी आवश्यक वस्तुएं, आभूषण तथा इंद्रिय सुख प्राप्त कर सकती है। यहां पर दिति के आचरण से यही सूचित होता है। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है और विशेष स्वागत है हमारे बीच में उपस्थित इस्कॉन जुहू मंदिर से आए सभी भक्तों का और उनके साथ आए जयपुर से उनके छात्रों का भी हार्दिक स्वागत करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ अमल पुराण है और अभी पीछे राजा चित्रकेतु का प्रसंग चल रहा था, उससे पहले इंद्र और ऋतासुर के वध का प्रसंग चल रहा था। तो आज जो चर्चा हो रही है, पिछले कुछ दिनों से नया अध्याय प्रारंभ हुआ है और इस अध्याय का नाम है राजा इंद्र का वध करने के लिए दिति का व्रत। तो बात बड़ी अजीब सी लग सकती है कि अभी राजा चित्रकेतु की कथा चल रही थी, इतनी सुंदर कथा, और अब अचानक राजा इंद्र का वध करने के लिए दिति का व्रत, ये अध्याय शुरू हो गया। तो एक स्त्री एक देवताओं के राजा इंद्र के वध करने के लिए व्रत ले रही है, इसका वर्णन भागवतम पुराण में है। तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है, षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी हो रही है इंद्र को मारने के लिए और इसका पूरा डिटेल में वर्णन यहाँ किया जा रहा है। तो वास्तव में जो भागवत पुराण है ये अमल पुराण है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बद जीव की इस भौतिक जगत से अनासक्ति हो, विरक्ति हो और भगवान में आसक्ति बढ़े। और हम देखेंगे इस पूरे प्रसंग के पीछे भी इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भगवान और भगवान की भक्ति की महिमा स्थापित की जाएगी। तो राजा इंद्र का वध करने के लिए दिति क्यों व्रत ले रही है, ये प्रश्न उठना चाहिए। और वास्तव में इस प्रसंग में हम देखेंगे कि जो भगवान की कथा है ये एक दर्पण का कार्य करती है, आईने का कार्य करती है। हम जब ये कथा सुनेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि किस ढंग से दिति जो कि दैत्यों की मां है जो व्यवहार कर रही है, ऐसा व्यवहार हम भी कर सकते हैं। किस प्रकार से तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव से मनुष्य अपनी विवेक शक्ति खो बैठता है और अपने दोषों को ना देखकर दूसरों में दोष देखता है। इससे हम अपने लोअर नेचर जो हमारे रजोगुण तमोगुण प्रभाव से हम अपने चेतना में नीचे गिरते हैं, हम उसको पहचान सकते हैं और अपने में सुधार ला सकते हैं। तो कृपया करके इस कथा को हम इस भाव से सुने। इस प्रसंग में भागवतम के श्लोकों में स्त्रियों के प्रकृति की वर्णन किया गया है और कई जगह स्त्रियों की आलोचना भी की गई है। तो कुछ चेतावनियां हैं आज की इस कथा से पहले। चेतावनी ये है कि हम हाथ जोड़ के जो वैष्णवी माता लोग यहां बैठे हैं उनसे प्रार्थना करें, कृपया करके इसको अपराध के रूप में ना लें। ऐसे हमारे में कोई ऐसी योग्यता नहीं है कि हम सुखदेव गोस्वामी की तरह, जो कि परम भक्त थे, पूरी शुद्धता के साथ कथा कर रहे थे। निश्चित रूप से हमारे में द्वेष और सब काम वासनाएं हैं, लेकिन प्रयास करेंगे अपना जितनी शुद्धता से हम इसको रिपीट कर सकें। लेकिन माता जी लोगों से निवेदन है कि कृपया करके इसको एक अपराध के रूप में ना लें, डोंट फील ऑफेंडेड। और दूसरा पब्लिक लोगों से निवेदन है कि बहुत हर्षित ना हो इस सुनकर कि जो स्त्रियों की आलोचना होगी। देखा, हम पहले कहते थे, अब तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, गुरु साधु शास्त्र में प्रमाण मिल गया हमें। तो पुरुषों से निवेदन है कि बहुत ज्यादा हर्षित ना हो, इलेटेड फील महसूस ना करें, देखो हम कितने श्रेष्ठ हैं। और जो ब्रह्मचारी भक्त हैं उनसे भी निवेदन है कि सुनकर वुमेन हेटर ना बन जाए, देख ऐसे ही है, सब स्त्रियां खराब है। और उनसे भी निवेदन है कि जो ब्रह्मचारी भक्त थोड़े से संतप्त हो जाते हैं ब्रह्मचारी आश्रम से, कुछ वैरायटी पाने के लिए सोच रहे होते हैं, चलो पारिवारिक जीवन में जाए, तो वो भी सोच लें। देखिए कि दो दिखता है वो होता नहीं है। तो बहुत से लर्निंग्स हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अंततः भगवान और भगवान की भक्ति की महिमा, कि व्यक्ति कितने भी निम्न स्तर पर क्यों ना गिर जाए, अगर वो भक्ति की विधियों का सही ढंग से पालन करे तो अपनी चेतना को वो उन्नत कर सकता है। अंततः ये बात स्थापित होगी। और किस ढंग से हम एक द्वेषी व्यक्ति को और जो जिसकी चेतना गिर गई है कैसे हम उसका सुधार कर सकते हैं, कैसे उसको भगवान में जोड़ सकते हैं, ये भी हम इससे इस प्रसंग से सीखेंगे। तो इस प्रसंग में प्रवेश करने के लिए पहले बैकग्राउंड में जाने का प्रयास करेंगे। वास्तव में यह छठा जो स्कंध है, ये भागवतम का छठा स्कंध, ये प्रारंभ होता है अजामिल की कथा से। पांचवां स्कंध समाप्त होता है कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को पूरे ब्रह्मांड की संरचना का वर्णन कर रहे हैं और अंत में नरक लोकों का वर्णन कर रहे हैं। तो सुखदेव परीक्षित महाराज एक वैष्णव है पर दुखी दुखी, तो वो बहुत संतप्त हो जाते हैं कि अरे बद जीवों को नरक लोकों में जाना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है कि वो जाने से बच सके। तो फिर भगवान के नाम की महिमा अजामिल की कथा आती है पहले तीन अध्यायों में। फिर चौथे अध्याय में परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि सृष्टि में जीवों की रचना कैसे हुई, कृपया करके इसके बारे में बताइए। तो फिर परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाते हैं प्रजापति दक्ष के विषय में। चौथे स्कंद में हम देखते हैं प्रजापति दक्ष ने शिव जी का अपमान किया था, अपराध किया था और उनके यज्ञ में ध्वंस कर दिया गया था और उनके सर को काट के एक बकरे का सर लगा दिया गया था। तो दक्ष प्रजापति ने आगे कैसे सृष्टि की रचना की, तो दक्ष प्रजापति चौथे अध्याय में देखते हैं हंस गुहे प्रार्थना। दक्ष प्रजापति ने खूब प्रार्थनाएं की भगवान से कि वो सृष्टि की रचना कर सके। फिर अगले अध्याय में पढ़ते हैं कि किस ढंग से उन्होंने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए और उनको गृहस्थ आश्रम में भेजने से पहले उनको बोला कि आप जाके तपस्या कीजिए। और सब 10,000 पुत्रों की भेंट किससे होती है, नारद मुनि से, और नारद मुनि उन सबको विरक्त कर देते हैं, वो ब्रह्मचारी बन जाते हैं। दक्ष प्रजापति को बहुत दुख होता है, फिर से 1,000 पुत्र उत्पन्न करते हैं, फिर से वो तपस्या करे जाते हैं, क्योंकि वैदिक संस्कृति में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले ये अनिवार्य था कि पुरुष निश्चित रूप से कोई तपस्या करे, है ना, ऐसे ही नहीं, पहले तपस्या करे, अपने आप को शुद्ध करे, फिर वो आश्रम में प्रवेश करे। तो 1,000 पुत्रों को, हालांकि 10,000 पुत्र पहले ब्रह्मचारी बन गए थे, फिर भी अनिवार्य था 1,000 पुत्रों को फिर से भेजा जाओ तपस्या करो। फिर क्या हुआ, फिर से नारद मुनि बोले और फिर से उनको उन्होंने ब्रह्मचारी बना दिया। और अब जो दक्ष प्रजापति भी थे बहुत ज्यादा कुंठित हो गए और बहुत उनको गुस्सा आया, और नारद मुनि ने सोचा इस पूरे परिवार का मैंने उद्धार कर दिया है, केवल दक्ष बचा, इसके बाद उद्धार कर देते हैं। तो नारद मुनि जब उनके पास जाते हैं तो दक्ष प्रजापति उनको बहुत बुरा सुनाते हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम, तुम अपने को समझते क्या हो, ढोंगी हो, ऐसे थोड़ी विरक्ति आ जाती है, और उनको श्राप देते हैं। तो नारद मुनि के श्राप को स्वीकार करते हैं और दक्ष प्रजापति की सृष्टि करने में रुचि बिल्कुल समाप्त हो जाती है। फिर ब्रह्मा जी उनके पास आते हैं और ब्रह्मा जी उनको समझाते हैं कि देखिए आप पुत्रों की उत्पत्ति मत कीजिए, नारद मुनि नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, ये कभी भी किसी कन्याओं के पास नहीं जाएंगे, कन्याओं की उत्पत्ति कीजिए। तो फिर दक्ष प्रजापति ने 60 कन्याएं उत्पन्न करते हैं, उन 60 कन्याओं में से वो अलग अलग प्रजापति और देवताओं से उनका विवाह करते हैं। 60 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह कश्यप मुनि से करते हैं। कश्यप मुनि एक प्रजापति हैं और भगवान के शुद्ध भक्त हैं। फिर अगले अध्यायों में परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कश्यप मुनि जो ये दक्ष प्रजापति की पुत्रियों के परिवार का वर्णन करते हैं, किससे कौन कौन सी संतान उत्पन्न हुई, और इस तरह से वर्णन करते करते वो अदिति के पास, अदिति भी एक दक्ष प्रजापति की पुत्री का नाम था और दिति भी दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं, जिनका विवाह किससे हुआ, कश्यप मुनि से। ये दोनों बहनें हैं अदिति और दिति, और उनके पति हैं कश्यप मुनि, और ये दक्ष प्रजापति की पुत्रियां हैं। तो इनके परिवार का वर्णन कर रहे हैं। तो अदिति के परिवार का जब वर्णन कर रहे हैं तो 12 आदित्यों का वर्णन होते हैं, अदिति के 12 पुत्र थे, उन 12 पुत्रों में से एक थे त्वष्टा। तो त्वष्टा के एक पुत्र थे विश्वरूप। विश्वरूप का वर्णन करते हुए परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि विश्वरूप देवताओं के यज्ञ के पुरोहित बने, क्यों, क्योंकि बृहस्पति का अपराध कर दिया था इंद्र ने, तभी परीक्षित महाराज ने रोक लिया, क्यों बने। तो इस ढंग से परीक्षित महाराज सुन रहे थे, इतने ध्यान से तुरंत रोक लेते थे। हालांकि जब हम लोग पढ़ते हैं भागवतम में और जब वंश का वर्णन आता है तो हम फटाफट हमें क्यों वंश का वर्णन कर रहे हैं, क्या आवश्यकता है इसमें, लेकिन इतने ध्यान से, हालांकि पिछले अध्याय में बताया गया है कि अगर कोई दक्ष प्रजापति के पुत्रियों के इस वंश का वर्णन सुनेगा उसके जीवन में सब मंगल ही मंगल होगा, इतना शुभ है सुनना। हम लोग टीवी सीरियल देखते हैं, अखबारें पढ़ते हैं, तरह तरह के वूज़ याद करते थे बचपन में, जनरल नॉलेज में कौन कौन है, बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम याद करते थे, सारे सारे असुर लोग और सबका याद करते थे, ये स्टेट मिनिस्टर है, ये कैबिनेट मिनिस्टर है, ये वहां है, अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है, कौन गवर्नर है, सब याद करते थे, है ना, सेलिब्रिटीज के नाम याद रखते थे, ये है सेलिब्रिटीज, है ना। और परीक्षित महाराज को जब सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं तो भागवतम पढ़ के नाम ही सुना रहे थे,
सुखदेव गोस्वामी को कंठस्थ थे ना। अब देखिए 60 पुत्रियां हैं, उन सबके वंश को सुना रहे हैं ऐसे ही, वो ध्यानपूर्वक सुना रहे हैं और परीक्षित महाराज ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, और थोड़ा सा बीच में गैप ना तुरंत पकड़ लेते हैं, विश्वरूप ने ऐसा कैसे आ गया, विश्वरूप क्यों बना पुरोहित। फिर एक कथा शुरू हो गई कि बृहस्पति का अपराध किया, फिर बृहस्पति का अपराध किया तो वृत्तासुर का प्रसंग आ गया, फिर बोला कि वृत्तासुर इतना अच्छा भक्त कैसे था, फिर चित्रकेतु कथा आ गई। अब चित्रकेतु कथा समाप्त हो गई, फिर दोबारा से पीछे परीक्षित महाराज किसका वर्णन कर रहे थे, दश वंश परंपरा का। अब वो फिर शुरू कर रहे हैं, त्वष्टा पे आके बात रुक गई थी, अब बाकी आदित्यों का वर्णन शुरू करते हैं। तो अदिति के बाकी पुत्रों का वर्णन किया, फिर उसकी बहन द्विति के पुत्रों का वर्णन किया। तो द्विति के पहले जो पुत्र थे वो थे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। गीता में प्रूफ डाले थे कि आदि दानव है, सबसे पहले ओरिजिनल डेमन्स। तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो उनके द्विति के पुत्र हुए, जिनकी पूजा बताया गया सभी दैत्य और दानव करते थे। और भागवतम के सातवें स्कंद में पढ़ेंगे कि हिरण्यकश्यप की पूजा स्वयं देवतागण करते थे, ब्रह्मा जी और शिव जी को छोड़कर सारे देवतागण हिरण्यकश्यप की पूजा करते थे, इतना खूंखार असुर था ये। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव। तो द्विति के पुत्रों का वर्णन करते करते वो आते हैं मरुत पे, कि मरुत है जो कि इंद्र के संपर्क में आके देवता बन जाते हैं, ये भी द्विति के पुत्र हैं। फिर से पकड़ ली परीक्षित महाराज ने बात, अरे भाई द्विति के पुत्र होते हुए देवता कैसे हो गए, है ना, कितनी अटेंटिव हियरिंग परीक्षित महाराज की है ना। हम लोग ये वंशावली का वर्णन करते तो हम सो जाते हैं ना, और स्पीकर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कैसे ऑडियंस को जीवित रखे, सचेत रखे, कि बोलते उसका लेना देना ही नहीं हमें, क्या मतलब कौन किसका पुत्र है, क्या है, हमें क्या लेना देना। लेकिन यहां पे तुरंत बात पकड़ ली, ये मरुत देवता कैसे बने। और ये जब ये सुना तो सुत गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज के इस प्रश्न को सुनकर सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि सुत गोस्वामी उस समय वहां पर उपस्थित थे जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो गए कि ऐसा शिष्य होना चाहिए। और फिर क्यों प्रसन्न हुए, क्योंकि अब उनको मौका मिलेगा दोबारा से भगवान और भगवान की भक्ति की महिमा के विषय में वर्णन करने के लिए, है ना। नारद मुनि भी जब ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछते थे कि आपको किसने ज्ञान दिया, तो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को धन्यवाद बोला, धन्यवाद तुम मुझे मौका दे रहे हो कि मैं भगवान की महिमा का गुणगान कर सकूं। इसलिए वक्ता को भी श्रोता को धन्यवाद देना चाहिए। और श्रोता इतना अटेंटिव परीक्षित महाराज जैसे, कुछ खाया नहीं था कुछ पिया नहीं था, सोचिए इतने ध्यान से सुन रहे थे, तुरंत पकड़ा ये मरुत ये देवता कैसे बन गए द्विति के पुत्र होते हुए, एनालिटिकली सुन रहे हैं। फिर परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं बहुत प्रसन्न होकर कि इसके पीछे भी एक कथा है। और वो प्रसन्न क्यों रहे हैं, अब उनको मालूम बताना पड़ेगा कि द्विति में कितना द्वेष उत्पन्न हो गया था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की मृत्यु के बाद। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न सुनकर सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हो रहे हैं अब मौका मिलेगा एक स्त्री की आलोचना करने का, है ना। सुखदेव गोस्वामी जी परम विरक्त हैं, नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं, तो वो निश्चित रूप से जो कथा करेंगे निश्चित रूप से भगवान की महिमा ही उसमें स्थापित होगी। तो वो बहुत ही हर्षपूर्वक इसका वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो 23वें श्लोक में श्री शुक उवाच, हत पुत्रा द्विती शक्र पाष्णी ग्राहे न विष्णु न मनु न शोक दीप्ते न ज्वलंती परिचिंतयत। बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी बोले इंद्र की सहायता करने के लिए भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष नामक दोनों भाइयों का वध कर दिया। उनके मारे जाने से उनकी माता द्विति शोक तथा क्रोध से परिपूर्ण होकर इस प्रकार सोचने लगी। तो ध्यानपूर्वक सुनिए, हत पुत्रा द्विति शक्र पाष्णी ग्राहे न विष्णु न। सुखदेव गोस्वामी ने बोला इंद्र की सहायता करने के लिए भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष नामक दोनों भाइयों का वध कर दिया। मनु न शोक दीप्ते ने, भगवान इंद्र ने विष्णु भगवान विष्णु से प्रार्थना की और भगवान विष्णु ने इंद्र के आग्रह को स्वीकार किया और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पुत्र थे द्विति और कश्यप के, ये बहुत पहले मारे जा चुके थे। लेकिन अब माता द्विति की मानसिक स्थिति क्या है, मनु न शोक दीप्ते ने, बहुत क्रोध है उनके अंदर, और ये क्रोध कैसा है, शोक से दीप्त है, बहुत शोक कर रही हैं वो, और जितना ज्यादा शोक कर रही हैं उतना उनका क्रोध बढ़ रहा है, ज्वलंती अंदर ही अंदर जलती जा रही हैं। जैसे जैसे इंद्र के बारे में सोच रही है, घुट रही हैं, जल रही हैं, शोक कर रही हैं कि मेरे बेटे को क्यों मारा गया और किसने मारा, इंद्र ने मारा, बहुत क्रोध आ रहा है उसको इंद्र के ऊपर। हालांकि इंद्र ने आग्रह किया है विष्णु से, हत्या किसने की थी, विष्णु ने, तो उनको भगवान पे क्रोध नहीं आ रहा। दिति माता भी भगवान की भक्त हैं, उनको माता दिति को भगवान विष्णु पे क्रोध नहीं आ रहा, उनको क्रोध ये आ रहा है कि इंद्र ने क्यों आग्रह किया। भगवान तो भक्त वत्सल है, कोई भी प्रार्थना करेंगे उनकी सुन लेंगे, तो इंद्र ने क्यों मेरे पुत्रों का वध किया, इस पे उनको क्रोध आ रहा है। भूल गई कि जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष थे ये दानव थे, बहुत बड़े बदमाश लोग थे, और इनके गर्भ में कैसे प्रवेश किया, ये भागवतम के तीसरे स्कंध में वर्णन आता है कि माता दिति ने कश्यप मुनि से संभोग की इच्छा व्यक्त की सायंकाल में, वो समय ठीक नहीं था और कश्यप मुनि ने कहा कि शास्त्रों के विरोध है, फिर भी काम वासनाओं से प्रेरित होकर उन्होंने जबरदस्ती अपने पति कश्यप मुनि से संभोग किया, और संभोग करते ही कश्यप मुनि ने बता दिया कि हमसे बहुत गलत कार्य हुआ है और इसका परिणाम अमंगलकारी होगा, जो तुम्हारे गर्भ से पुत्र उत्पन्न होंगे वो असुर होंगे, वो पूरे ब्रह्मांड में खलबल मचा देंगे, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, ब्राह्मणों के प्रति अपराध करेंगे और बहुत बड़े जैसे दुष्ट होंगे, दानव होंगे, और इतने बड़े दानव होंगे कि उनकी हत्या करने स्वयं भगवान विष्णु को अवतार लेना होगा। जब ये सब माता दिति ने सुना तो उनको बहुत दुख हुआ, लेकिन एक बात से प्रसन्नता उनको हुई कि मेरे पुत्रों को आप वध करने के लिए स्वयं भगवान अवतार लेंगे। उन्होंने बोला मुझे ये जानकर खुशी है कि मेरे इन दानव पुत्रों का वध भगवान करेंगे, ये किसी ब्राह्मण के शाप से नहीं मारे जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मणों के प्रति अपराध करेंगे तो ब्राह्मणों के शाप से नहीं मारे जाएंगे, इसका मुझे बहुत सुख है। देखिए माता दिति की उसमें चेतना कैसी थी, और वो बहुत पश्चाताप कर रही थी कि वास्तव में काम वासनाओं से प्रेरित होकर उससे उनसे गलती हो गई। और फिर कश्यप मुनि उनको बताते हैं क्योंकि तुम पश्चाताप कर रहे हो और दोबारा से इस पर पूरा विचार कर रहे हो, और एक और शुभ समाचार है कि तुम्हारा जो पौत्र होगा, हिरण्यकश्यप का पुत्र होगा, एक महाभागवत होगा, प्रहलाद। तो ये सुनकर उस समय माता दिति संतुष्ट हो गई थी, हालांकि उनसे गलती हुई थी और अपनी गलती को वो स्वीकार भी कर रही थी, और उनको मालूम था कि अब मेरे घर में दो असुर हैं, तो उन्होंने कश्यप मुनि के इस वीर को 100 वर्षों तक ग्रहण करके रखा, 100 वर्षों तक उन्होंने जन्म नहीं दिया, इतनी उनमें शक्ति थी। लेकिन फिर 100 वर्षों के बाद हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म होता है, और जैसे ये मां के गर्भ से बाहर आते हैं पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा जाता है, अमंगल ही अमंगल, सारे देवतागण एकदम भयभीत हो जाते हैं और भयभीत होकर वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ऐसे असुर उत्पन्न हुए, और उस समय जब वे मां के घर में उन्होंने प्रवेश किया था उसी समय माता दिति को मालूम चल गया था कि उनकी गलती है, लेकिन अब जब उनका वध हो गया और उनको इतना बड़ा एक समझ लीजिए वरदान मिला कि स्वयं भगवान उनकी हत्या करने आए, और इसको जानकर वो बहुत प्रसन्न भी थी, और अब इतने सालों के बाद, इतने समय के बाद वो शोक कर रहे हैं, तो ये स्त्रियों की प्रकृति होती है ना, हाय मेरा बेटा, मेरा बेटा चला गया, बेटा कैसा है, असुर है, और उस असुर ने पूरे ब्रह्मांड को तंग किया हुआ था, तो उसका वध करने के लिए इंद्र ने अपने लाभ के लिए नहीं, सब लोगों के लाभ के लिए उन्होंने प्रार्थना की थी और भगवान प्रकट हुए थे, लेकिन शोक के कारण माता दिति का विवेक समाप्त हो गया और वो अनावश्यक इंद्र के प्रति द्वेष कर रही है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि शोक करना कितना खतरनाक है, बताया गया है शोको नश्यति धैर्यम, शोको नश्यति श्रुतम, शोको नश्यति सर्वम, नास्ति शोको समो रूपु। शोको नश्यति धैर्यम, शोक से सारा का सारा धैर्य समाप्त हो जाता है। बदजीव तो गलती करता ही है, कंडीशन सोल का एक दोष है कि वो गलती करेगा ही करेगा, लेकिन गलती करने के बाद हमेशा हम शोक करते रहते हैं, हाय मैंने ऐसा क्यों कर दिया, हाय मैंने ऐसा क्यों कर दिया, हाय वो बिजनेस डील क्यों नहीं की, ऐसा कर ले तो ये हो जाता, हम शोक करते रहते हैं। शोको नश्यति धैर्य, शोक से धैर्य का नाश हो जाता है। जैसे कि माता दीदी को उस समय शोक हुआ कि मैंने एक गलती कर दी, लेकिन कश्यप ने उनको समझाया तो उनको धैर्य आ गया था, लेकिन अब दोबारा से वो शोक कर रहे हैं तो सारा धैर्य समाप्त हो गया। शोको नश्यति श्रुतम, श्रुतम का अर्थ है ज्ञान, जो हमने सुना हुआ है सारा का सारा ज्ञान समाप्त। शोक के समय सारा ज्ञान, सारी विवेक शक्ति समाप्त हो जाती है। शोको नश्यति सर्वम, सब कुछ नाश कर देगा। नास्ति शोको समो रिपु, शोक के समान हमारा कोई शत्रु नहीं है, सब कुछ नष्ट कर देता है। हम देख सकते हैं माता दीदी के चरित्र में इस शोक के कारण उनको इतना क्रोध आ रहा है, और किससे द्वेष कर रहे हैं, अपने पुत्र समान इंद्र से ही वो द्वेष कर रही हैं। इंद्र उनकी बहन का बेटा है, एक तरह से उनका क्या हुआ, नेफ्यू, भांजा हो गया है ना, और दूसरी तरफ से उनकी सौत का पुत्र है। तो सुतेल, सौत, स्त्रियों में सौत के लेके आपस में बहुत, मेरी सौत का पुत्र है और मेरे पुत्र को इसने मारा, तो बहुत द्वेष हो रहा है। ये दिखा गया है कि ये तो माता दीति हैं, स्वयं कुंती महारानी जो कि भगवान की इतनी परम भक्त हैं, सौत को लेकर उनमें भी, वो महाभारत में एक प्रसंग आता है कि कुंती महारानी को ये वरदान प्राप्त था कि वो मंत्रों का उच्चारण करके किसी भी देवता को आवाहन कर सकती थी, और इस प्रकार उन्होंने तीन पुत्रों को प्राप्त किया, युधिष्ठिर, धर्मपुत्र युधिष्ठिर, वायुपुत्र भीम और इंद्रपुत्र अर्जुन। लेकिन जो माद्री थी, पांडु की दूसरी पत्नी, वो बिल्कुल निसंतान थी और उनको बहुत दुख था। तो पांडु ने कुंती महारानी से आग्रह किया कि क्यों नहीं तुम मंत्रों का आचरण करके इनको भी ये मौका देती, उनका हम दुख दूर करें, तुम एक सुशील और एक सभ्य स्त्री हो और भगवान की भक्त हो, तो मुझे विश्वास है कि तुम इसकी सहायता करोगे। तो कुंती महारानी ने माद्री को बोला कि तुम भी किसी देव पर ध्यान करो, मैं मंत्रों का उच्चारण करूंगी और तुम गर्भवती हो सकती हो। तो उन्होंने, माद्री ने सोचा किस देव पर ध्यान किया जाए, तो उन्होंने दोनों अश्विनी कुमारों पर ध्यान किया, और कुंती महारानी ने मंत्र का उच्चारण किया और दोनों अश्विनी कुमारों के मदद से माद्री माता गर्भवती हो गई और नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। इसके बाद से पांडु भी प्रसन्न हो गए, माद्री माता भी प्रसन्न हो गई। तो पांडु ने फिर से आग्रह किया कुंती महारानी से कि तुम फिर से देवताओं का आह्वान करके माद्री माता को फिर से गर्भवती कर सकते हो। तो इस बार कुंती महारानी ने मना कर दिया, कहते ये मैं एक स्त्री हूं और स्त्रियों की यह प्रकृति होती है, माद्री के लिए मैंने मंत्रों का उच्चारण किया लेकिन माद्री ने मुझे धोखा दिया, एक साथ दो देवताओं को बुला लिया। मैंने भी किया था, मैंने एक एक देवता को बुलाया था, मुझे नहीं मालूम था कि दो देवताओं के साथ ये मंत्र चलता है, और दोबारा मैं करूंगी तो ये मेरे से आगे निकल जाएगी, अब मैं मंत्र का उच्चारण नहीं करूंगी। देखिए, कहती अब मैं नहीं सहन कर सकती कि माद्री मुझसे आगे निकल जाए, हालांकि उसके पास शक्ति थी, उसने दोबारा से माद्री मां को गर्भवती नहीं बनाया। तो उसमें खुद ही वो मान रही है कि मेरी ये प्रकृति है, मैं स्त्री हूं, मैं एक सौत को अपने से आगे कैसे पढ़ने दू। इसी ढंग से दिति की सौत का पुत्र है इंद्र, जो कि देवताओं का राजा है, और उसने जनहित के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि आप आइए और इनका वध कीजिए। उनका कोई अपना कोई स्वार्थ नहीं था, लेकिन माता दिति शोक और क्रोध के कारण बिल्कुल भूल रही है और उनसे द्वेष कर रही है। फिर आगे बताया जाता है कि कदानु भ्रातृ हंताराम इंद्रियाराम उल्बणम अक्लिन हृदय पापम घातित्वा शये सुखम। अब सुनिए, अत्यंत इंद्रिय लोलुप भगवान इंद्र ने हिरण्यकश्यपु तथा हिरण्याक्ष इन दोनों भाइयों का वध भगवान विष्णु के माध्यम से किया है, अतः वह क्रूर कठोर हृदय एवं पापी है, मैं कब उसे मार कर शांत चित होकर दम ले सकूंगी। देखिए क्या मानसिकता चल रही है दीदी माता की, वो कह रही है कि जो इंद्र है वो इंद्रिय आराम है, वो इंद्र तृप्ति में लिप्त है, और उसने मेरे दो बेटों का वध किया है, अपने भाइयों का वध किया है ना, तो अक्लीन है, कितना वो उसका हृदय निर्दयी है और कितना क्रूर है, वो पापी है, और कब मैं उसको मार कर चैन से नींद सोऊंगी। ये बातें वो कश्यप मुनि से नहीं बता रही है, अपने हो सकता है अपने सहर साथ की कोई मित्र हो उसके साथ शेयर कर रही हूं कि देखिए हृदय में क्या उसके चल रहा है, क्या प्लानिंग चल रही है कि मैं इंद्र को मारूंगी क्योंकि इसने मेरे दो बेटों को मरवाया है और इंद्र क्रूर है, निर्दयी है, पापी है, इंद्र तृप्ति में लिप्त है, इसलिए उसने मेरे दो बेटों का वध कराया है। तो देखा जाए क्या इंद्र वास्तव में क्रूर है, क्या निर्दयी है। यहां दो शब्द हुए, निर्दयी और क्रूर, इन दोनों का अर्थ क्या होता है। निर्दयी का अर्थ ये होता है कि किसी की दयनीय स्थिति को देखकर उसका हृदय पिघलेना, और क्रूर का अर्थ होता है कि किसी पर अनावश्यक अत्याचार करता रहे। तो माता दिति स्वयं क्रूर हो रही है इस समय, और वो इंद्र को कह रही है कि इंद्र क्रूर है। इंद्र क्यों क्रूर है? इंद्र ने तो असुरों का वध कराया, और भगवान हमेशा इंद्र के आग्रह पर आते ही हैं। इंद्रारी व्याक्रूर लंगम वेदयंती युगे युगे, ये तो इंद्र की विशेषता है। लेकिन वो कह रही हैं कि वो निर्दयी हैं और क्रूर हृदय वाले हैं, और उनका दुस्साहस देखिए क्या योजनाएं चल रही हैं, कि अंदर ही अंदर वो सोच रही हैं बिना कश्यप मुनि के बताए, कश्यप मुनि के ही पुत्र का वध करने के लिए वो योजना बना रही है, और कश्यप मुनि के साथ ही रह रही है। आप सोचिए ग्रहेशु कूट धर्मेशु, घर में कितनी पॉलिटिक्स होती है पति और पत्नी के संबंधों में। देखिए जिस पति के साथ वो रह रही है उसी के पुत्र का वध कराने की योजना बना रही है, और उसको कुछ भी नहीं बता रही, अंदर ही अंदर ये योजना चल रही है। कितना दुस्साहस है। राधा गोविंद महाराज हिजोरी में राधा गोविंद महाराज इस प्रसंग में कथा करते हुए बताते हैं, वो कहते हैं कि शास्त्रों में बताया गया है कि स्त्रियों के अंदर पुरुषों से ज्यादा, चार गुना ज्यादा साहस होता है। हालांकि पुरुष लोग दिखने में और अपने बातचीत में ज्यादा कठोर लगते हैं, और स्त्रियां बातचीत करने में और दिखने में बहुत सुंदर, सुशील और कोमल लगती हैं, लेकिन हृदय पुरुषों का ज्यादा कोमल होता है और स्त्रियों का हृदय बहुत कठोर होता है। और इतना साहस, ऐसी प्लानिंग किसी भी पुरुष के हृदय में नहीं आएगी। पुरुष लोग होते हैं बात हुई गई भूल गए, लेकिन स्त्रियां याद रखती हैं। इतना लंबा समय बीत गया, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का वध हुआ, और माता देवी ने अपनी गलती स्वीकार भी की थी, खुद गलत समय पर संभोग के लिए प्रेरित किया था, और मालूम था कि ऐसे गलत समय में करेंगे तो अमंगलकारी संतान आएगी गर्भ में, उनको मालूम ही था, अपनी गलती भी स्वीकार कर रही थी। और उस समय कश्यप ने बताया कि भगवान तुम्हारे संतान का वध करेंगे, तो ये सुनकर संतुष्ट हो गई थी। अब भगवान ने इंद्र के कहने पर वध किया, तो अब इंद्र से द्वेष कर रही है, हाय मेरे बेटों को इसने मरवाया है और ये इंद्र ही दोषी है, इसका मैं वध करवाऊंगी। अंदर ही अंदर योजनाएं बना रही है बिना कश्यप मुनि को बताए। तो कितना क्रूर हृदय है बताइए। तो शास्त्रों में ही वर्णन आता है कि भागवतम के नवे स्कंद में प्रसंग आता है पुरुरवा और उर्वशि का, है ना। और उर्वशि पर पूरे मोहित हो गए थे पुरुरवा, सारा विवेक भूल गए थे, एकदम पागल हो गए थे उसके, और बाद में उर्वशि उनको धोखा देकर चली जाती है, और उर्वशि खुद बोलती है कि तुम मूर्ख हो, तुम जानते नहीं हो स्त्रियां क्या हैं, तुम मूर्ख हो, बोल रहे तुम स्त्री के हृदय को तुम्हें जानना चाहिए, लोमड़ी जैसी है, स्त्रियों से मित्रता करने का कोई लाभ नहीं है। बोलते हैं स्त्रियों ही करुणा क्रूरा दुर्मशा प्रिय साहसा कनंती अल्पर्थे अपि विश्रब्धम पतिम भ्रातमुप्युता। स्त्रियों की जाति करुणा विहीन तथा चतुर होती है। ये कौन बोल रही है? उर्वशी, एक स्त्री बोल रही है, स्वयं बोल रही है, कन्फेशन। वे थोड़ा सा भी अपमान सहन नहीं कर सकती, वे अपने आनंद के लिए कुछ भी अधर्म कर सकती हैं, अतः वे अपने आज्ञाकारी पति या भाई तक का वध करते हुए नहीं डरती है ना। कृपया करके वो वार्निंग्स, वो चेतावनी याद रखे हैं जो हमने बताया था, और माता जी लोग ध्यान करो, ऐसे जब ये स्त्रियों का वर्णन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वैष्णवी माताओं के ऊपर ये लागू नहीं होता, लेकिन फिर भी अभी हम लोग पूर्ण रूप से देहात्म चेतना से ऊपर नहीं उठे हैं, तो हमें सावधान रहना चाहिए। हम कोई स्त्री पुरुष नहीं है, हम जीवात्मा है, और पूर्व जन्मों कर्मों के अनुसार हमें एक स्त्री का देह मिलता है और पुरुष का देह मिलता है, और जीवात्मा जब पुरुष के देह में होती है तो उसकी एक प्रकार की प्रकृति स्वभाव होता है, स्त्री के देह में जब वो जीवात्मा होती है तो वो उसका एक प्रकार का स्वभाव होता है। लेकिन प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव में रहकर कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, तो हमें त्रिगुणातीत तो होना ही पड़ेगा। तो जो स्त्री के देह में जीवात्मा है उसको जानना चाहिए कि इस प्रकार के मेरे देह की प्रकृति है जो कि भक्ति में बाधा करेगी, इतना क्रूर हृदय होता है, तो मुझे बहुत सावधान रहना चाहिए कि मैं अपने इस प्रकृति से बच के रहूं। और बोला गया है कि जो पुरुष लोग स्त्री की प्रकृति से प्रभावित होते हैं वो अगले जन्म में कौन बनते हैं, स्त्रियां ही बनती। तो अधिकांशता जो अभी पुरुष देह में पिछले जन्म में क्या थे, स्त्रियां थी, और अगले जन्म में क्या बनेंगे, स्त्रियां बनेंगे। तो ज्यादा खुश होने की बात नहीं है पुरुषों की, हम श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हम स्त्रियों के नेचर से प्रभावित होते हैं, तो अगले जन्म में ज्यादातर पुरुष स्त्री बनेंगे और स्त्रियां पुरुष बनेंगे, तो ये चलता रहेगा। तो हमें बद जीव को सोचना है कि किस प्रकार की प्रकृति होती है ताकि हम इससे ऊपर उठ सके। तो स्त्रियों को इतना क्रूर हृदय वाला बताया गया है कि दिखने में हो सकता है वो बहुत कोमल लगे और बहुत मीठी मीठी बातें करें। कश्यप मुनि को जब बाद में मालूम चलेगा तो मालूम चलेगा कि ये जो दिति माता इतनी सेवा कर रही थी इसके पीछे इनका क्या उद्देश्य था। तो बाद में कश्यप मुनि बताएंगे, शरद पद्म उत्सवम वक्त्रम वचश्च श्रमणामृतम हृदय अंशुर धाराभाम स्त्री नाम को वेद चेष्टितम। स्त्री का मुख अत्यंत आकर्षक तथा शरद कालीन खिले हुए कमल पुष्प के समान होता है। विशेषकर जो युवतियां होती हैं उनका चेहरा कैसा होता है, शरद कालीन में खिलते हुए कमल के समान, अत्यंत आकर्षक। वचस्य श्रवणामृतम, जो वचन निकलते हैं कैसे, अमृत के समान, अत्यंत मधुर और कानों को प्रिय। हम देखते हैं जो कोई स्त्री गाती है तो कितना मधुर लगता है, अक्सर जितने भी फिल्मी सॉन्ग गाने वाले हैं स्त्रियां तो बहुत फेमस है, पॉप सिंगर्स में भी स्त्रियों का गाना बहुत पसंद किया जाता है। इसे चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि सन्यासियों ब्रह्मचारियों को स्त्रियों का गायन नहीं सुनना चाहिए, बहुत ही आकर्षक। हृदय, लेकिन हृदय कैसा है, सुंदर चेहरा खिले हुए कमल के समान, वचन अमृत के समान, हृदय क्षुर धाराब्धम, कैसा है। उनके हृदय का अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा छुरे की धार के समान अत्यंत पैना। भला ऐसा कौन है जो स्त्री के चरित्र को जान सके, कोई भी नहीं है। अक्सर लोग ये बोलते मैं जानता हूं, पत्नी को बोलते मैं जानता हूं तेरे को, कुछ नहीं जानते हो। कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते हो। कश्यप मुनि बोल रहे हैं कोई नहीं जान सकता, नो वन कैन अंडरस्टैंड अ वुमन, नो वन, बहुत मुश्किल है। माता जी लोग स्त्रियां सोचती कुछ है, करती कुछ है, देखती कहीं और है, बोलती कुछ और है, बहुत मुश्किल है। हां करती है तो मतलब ना, ना करती है मतलब हां, कुछ नहीं, तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। इसलिए जब तक स्त्री और पुरुष एक दूसरे की देह से आकर्षित होंगे, अमंगल ही अमंगल, सर्वनाश। कोई स्कोप ही नहीं है कि हमारे जीवन में कुछ मंगल हो। दिखने में जितनी मर्जी सुंदर हो, मीठी मीठी बातें हो, अगर हम केवल बाहरी आवरण से आकर्षित हैं तो हमारे जीवन में सुख हो ही नहीं सकता। हमारा स्त्री और पुरुष का जो हमारे पूर्व जन्म कर्म के अनुसार से हमें जो भी देह मिला है, जब तक कृष्ण को केंद्र में नहीं रखेंगे, जब तक कृष्ण से दोनों आकर्षित नहीं होंगे, गृहस्थ आश्रम में या किसी भी स्थिति में सुख नहीं हो सकता। तो ये सब सीखने को मिल रहा है। देखिए कितना दिति माता कितनी क्रूर हो गई है, कितनी क्रूर हो गई है कि अपने ही पुत्र समान इंद्र का वध कराने के लिए वो प्रेरित हो रही है, योजनाएं बना रही है, और बोली जब तक इसका वध नहीं कराऊंगी चैन की नींद नहीं सो पाऊंगी। इतना कठोर हृदय, किसी का वध कराने के लिए एक स्त्री तैयार इस ढंग से। और आगे बता रहे हैं कि वो अगर इतने भी नीचे गिर सकती है चेतना कि अपने पति का, अपने भाई का भी वध करा सकती है अपने एक इच्छा को पूर्ति करने के लिए। उसके बाद वो बता रही हैं, कृमि मित भस्म संज्ञा आसीत यस्य इश अभिहितस्य मुद्भुत धृक तत्कृते स्वार्थम किम वेद निर्योयत। समस्त राजाओं तथा नेताओं के शरीर मृत्यु के पश्चात कीड़ों विष्टा अथवा राग से परिणित हो जाएंगे। यदि कोई ऐसे शरीर की रक्षा के लिए ईर्ष्यावश अन्यों का वध करता है तो क्या जीवन के वास्तविक हित को जानता है। निश्चय ही वह नहीं जानता, क्योंकि अन्य जीवों के प्रति ईर्ष्या करने से वह अवश्य ही नर्क को जाता है। तात्पर्य प्रभुपाद में बताते हैं, बड़े से बड़े राजा का शरीर अंततः विष्ठा कीड़ों तथा राख में बदल जाता है। यदि कोई देहात्म बुद्धि के प्रति अत्यधिक आसक्त है तो वह अवश्य ही बुद्धिमान नहीं है। आप देखिए, माता दिति बहुत ऐसे ज्ञानियों की तरह बात कर रही है, बोल रही है ये इंद्र ने मेरे दो पुत्रों का वध कराया। अरे वो उसको मालूम नहीं है कि चाहे कोई राजा भी क्यों ना हो, किसी भी स्थिति में क्या ना हो, शरीर की तीन स्थितियां होती हैं, क्या? या तो भस्म बन जाता है, या मल बन जाता है, या राख। बस इतना है, तो उसको क्यों उसने मेरे बेटों का वध करा दिया? उसको मालूम नहीं है कि अंततः शरीर की तो यही हालत होगी, और अपने शरीर के सुख के लिए मेरे बेटों का वध करा दिया, और खुद भी इंद्र का वध कराने जा रही है, तो क्या होगा? तब भी यही होगा कि भस्म बनेगा, राख मल बनेगा और मिट्टी बनेगा। तो दिखने में अगर कोई खाली ये श्लोक बोले सुने और बोले यार माता दिति तो बहुत ज्ञानी है ना, कितने अनासक्ति की बातें कर रही है, लेकिन विषय उद्देश्य देखिए। फिर अगले श्लोक में बताती हैं, दिति ने विचार किया कि इंद्र अपने शरीर को शाश्वत समझकर अनियंत्रित हो रहा है। देखो, शोक और क्रोध के कारण दिति को अपने दोष नजर नहीं आ रहे, और इंद्र में ही सारे दोष नजर आ रहे हैं कि इंद्र इतना भी नहीं जानता कि आत्मा शरीर में क्या भेद है, कि शरीर का क्या अंत परिणाम होता है, और इंद्र अपने शरीर को अपनी आत्मा समझ रहा है, इसलिए वो अनियंत्रित हो रहा है, उसको सेल्फ कंट्रोल नहीं है। अतः मैं ऐसा पुत्र चाहूंगी जो इंद्र के मतवालेपन को दूर कर सके। खुद पागल हो रही है, खुद मतवाली हो रही है, और बोल रही है कि मैं एक ऐसा पुत्र चाहूंगी जो इंद्र के मतवालेपन को दूर कर सके। इसके लिए मैं कुछ ना कुछ उपाय करती, क्या योजनाएं बना रही है। तात्पर्य, जो लोग देहात्म बुद्धि में रहते हैं वो शास्त्रों में उनकी तुलना बैलों और गधों जैसे पशुओं से की गई है। दिति इंद्र को दंड देना चाहती थी जो पशु की तरह नीच बना हुआ था। ये दिति का विचार था कि इंद्र इतना नीचे गिर गया है, अब इसके पागलपन को ठीक करना चाहिए। तो देखिए, ये दिति माता के हृदय में योजना चल रही है कि वो इंद्र का वध कराना चाहती है। जब तक इंद्र का वध नहीं कराऊंगी मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगी, और अपने अज्ञानता को वो देख नहीं पा रही है, अपने दोषों को देख नहीं पा रही है, इंद्र में सारे दोष देख रही है। अब उसको एक पुत्र चाहिए जो इंद्र का वध कर सके, और पुत्र किससे प्राप्त होगा उसको? अपने ही पति से। यानी अपने ही पति से एक ऐसा पुत्र लेकर अपने ही पति का पुत्र का वध कराने लगी है। इंद्र किसका पुत्र है? कश्यप का। और कश्यप से एक और पुत्र उत्पन्न करके वो एक कश्यप से इच्छा जाहिर करेंगी, मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो आपके दूसरे पुत्र को मार सके। कौन पिता ऐसा पुत्र उत्पन्न करना चाहेगा जो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड है, देवताओं का राजा है, कोई बुरा काम नहीं कर रहा, या बहुत नलायक तो है नहीं। इंद्र भी अच्छे व्यक्ति हैं, है ना, और देवताओं के राजा हैं, बोल रहे हैं कि ऐसा पुत्र मुझे दो जो देवताओं के राजा का वध कर दे, तो कौन मानेगा ऐसी बात को। लेकिन उन्होंने बोला मुझे कुछ उपाय करना चाहिए। तब उन्होंने क्या सोचा कि मुझे अब कश्यप मुनि की सेवा बढ़ा देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पहले सेवा नहीं करती थी, दिति माता हालांकि द्वेष करती थी लेकिन पतिव्रता स्थिति थी, भगवान की भक्त थी। अब उनके मन में ये विचार आया कि मुझे अब एक ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र का वध कर सके, तो दिति माता ने सेवा बढ़ा दी कश्यप मुनि को प्रसन्न करने के लिए, ताकि वो उनकी इच्छा पूरी कर सके। कैसे सेवा की? इति भावे न सा भर्तु चचार सत्सकृत प्रियम। इस विचार से अपने भर्तु अपने पति का क्या किया, उन्होंने खूब सेवा की। कैसे? शुश्रया। शुश्रया का अर्थ है अपने शरीर से। तो एक पत्नी पति के शरीर से कैसे सेवा कर सकती है? उसके लिए खाना बनाना, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाती होंगी, है ना, और क्या करती होंगी, घर साफ सुथरा रखती होंगे, उनका स्नान करवाना, उनको मसाज कराना, उनका सारे ख्याल रखना, ना खूब अच्छा अच्छा तो बहुत सेवा की शरीर से। अनुरागेण, बड़े प्रेम से, यानी कि बनावटी कर रही थी, हृदय से उनकी खूब सेवा की। प्रश्येण, बहुत ही विनम्रता से, विनीत भाव से, ना कभी भी माता जी स्त्रियों को पुरुषों के सामने पति के सामने नहीं दिखाना चाहिए, देखो मैं कितने बड़े घर से आई हूं, है ना, मैं तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूं, है ना, मैं तुमसे ज्यादा धन कमाती हूं, आजकल तो ये भी है ना, और तुम हो क्या ऐसे, है ना, और फिर विनीत भाव से, बहुत ही दीन भाव से वो अपने कश्यप मुनि की सेवा कर रही थी। दमेन चा, अपने इंद्रियों को पूरा वश में करके, ये नहीं कि बोल रहे थे कि बार बार मुझे संग करो या फिर मुझे कुछ वस्तुएं दिलाओ, नई आभूषण दिलाओ, नई साड़ियां दिलाओ, घुमाने ले जाओ, सिनेमा में ले जाओ, रेस्टोरेंट में ले जाओ। दमेन चा, अपने इंद्रियों को पूरा संयम किया हुआ है ना? दिल्ली शहर में तुम देखते हैं कि स्त्री अपने दम से पतियों का आंका ले जाती है, लेकिन यहां लिखा गया कि दमेन का अर्थ है इंद्रियों को वश में करके, पूरे अपने इंद्रियों को वश में किया हुआ, बड़ी विनम्रता के साथ, पूरे हृदय के साथ अपने पूरे शरीर को अपने पति की सेवा में लगाया हुआ है ना, इतनी आदर्श पत्नी की तरह एकदम। और फिर भक्तिया, भक्ति के साथ, तो कह रहे हैं और मनोज्ञ वल्गु भाषित है, वल्गु भाषित है, बहुत मीठी मीठी भाषा उनके है ना, बहुत मीठी मीठी भाषा, आप बहुत अच्छे हैं, मैं पूर्ण रूप से आप पर आश्रित हूं, और क्या बोल सकती है मीठी मीठी भाषा में आप लोग जा जाते हैं माता जी, बहुत मीठी मीठी भाषा है ना। ऐसा बोला कि जैसे जैसे हस्बैंड है बेचारा, ऑफिस में भी मार खा के आता है, बॉस की सुन के आता है बेटा हुआ, और मेट्रो में पिसा हुआ जब वापिस आता है घर में, और आते ही उसको वह सुनने को मिले, तो बेचारा घर में क्यों आएगा, आएगा घर में, कई बार लोग ऐसे थे ऑफिस में थे वो घर जाते ही नहीं थे, बीच में हमारे ऑफिस में ऐसे हो गया कि बहुत ज्यादा लोग रुकने लगे तो उन्होंने स्कीम बना दी, हमारे पॉलिसी निकाल दी जनरल मैनेजर ने, कोई लेट वर्किंग नहीं, कोई ओवरटाइम नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बोले मत दो तब भी नहीं जा रहे, बोले क्यों, यहां कुछ काम है, बाद में कोई काम नहीं करते, बैठ के आपस में गप्पे मारते थे सब, कि घर जाना अवॉइड करते हैं, अवॉइड करते हैं, क्या घर में रखा क्या है, क्यों जाके फिर वही सुनना, एटलीस्ट यहां रिलैक्स तो हो रहे हैं ना, कंप्यूटर में कुछ देखते रहे, सर नेट सर्फिंग करते रहे, आराम से रात हो गए कि हम भी थके वो भी थके, बातचीत हो ही ना, ना तो बहुत, इसलिए पति एक्सपेक्ट करता है कि जब हम घर में आऊं तो पत्नी एटलीस्ट मीठे मीठे शब्द बोले, है ना, बोले मीठे मीठे शब्दों से ही अगर पति पत्नी पति का स्वागत करे तो पति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मोटा ताजा हो जाता है ना? और जितना मर्जी खिला है, लेकिन कड़वे कड़वे शब्द बोले पति बेचारा दुबला पतला रहता है, एकदम कमजोर हो जाता है, तो मीठे शब्द बोलना बहुत जरूरी है। चाणक्य पंडित कहते हैं, माता यस्य गृहे नास्ति भार्या च प्रिय वादिनो अरण्यम तेन गंतव्यम यथारण्यम तथा ग्रहम। अगर किसी घर में उसकी मां नहीं है और पत्नी है, और पत्नी बहुत अप्रिय बातें बोलती है, कड़वी बातें बोलती है, क्या करना चाहिए, अरण्यम तेन गंतव्यम, घर छोड़ के वन में चला जाना चाहिए, कि मां है नहीं घर में, पत्नी है वो भी खाने को दौड़ती है, तो वन में चले जाओ, कोई पशु खा लेगा ज्यादा अच्छा है पशु कोई ऐसी बातें तो नहीं बोलेगा कि जो हमें चुपती रहे, तो पशु और वन में अंतर क्या है, फिर घर में और मतलब कि वन में, वन में चले जाओ, वन में एटलीस्ट कंदमूल खा लूंगा, स्नान करके थोड़ा सो जाऊंगा, और तो इसलिए बहुत जरूरी है। और आजकल ही कल्चर समाप्त होता जा रहा है, क्यों, स्त्रियां पुरुष दोनों ही वर्किंग है और दोनों ही थके हुए आते हैं, पिसे हुए आते हैं, तो घर का काम कौन करे, बाहर जाके खाते हैं या नौकर बनाता है, और क्लेश ही क्लेश, सारा जो व्यवस्था है टॉपसी टर्वी, उल्टी सीधी हो रखी है। लेकिन जहां संभव है वहां होना चाहिए, और माता दीति दिखा रही है वल्गु भाषण है, बहुत ही मीठी मीठी बातें कर रहे थे, शरीर से हृदय से इतनी सुंदर सेवा, और क्या है, मनोजग रहा, पूरे कश्यप मुनि के मन को वश में कर लिया, बल्कि कश्यप मुनि के मन के ऊपर छा गई दीति माता, और कश्यप मुनि को बाधे कर दिया सोचने के लिए कि मेरी इतनी सेवा कर रही है, मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है, इसको मैं कुछ दूं, एकदम जिसे कहते हैं उसको दिल को जीत लिया, इतनी सेवा, भावज्ञ मतलब कि कश्यप मुनि के भावों को समझ गई, बिल्कुल इशारा भी करने की आवश्यकता नहीं है, इतनी सुंदर सेवा, आप देखिए पूरा उनके भाव समझिए, अब उनको क्या चाहिए, उनके कहने से पहले ही, इशारा करने से पहले वो चीज उपस्थित कर दे, और अपने हृदय से विनीत से सारी इंद्रियों को संयम कर, मैं कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, सारी इंद्रियां संयमित, विनीत भावना से मीठी मीठी भाषा बोलकर और उनके पूरे मन को जीत लिया। लेकिन पीछे उद्देश्य क्या था? कि ऐसा पुत्र चाहिए जो आपके पुत्र का वध कर दे। देखिए पीछे उद्देश्य, देखिए कितना क्रूर हृदय। तो जब बाद में इतनी अच्छी सेवा करने के बाद कश्यप मुनि का हृदय पिघल जाएगा, बोला मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, और जब अपनी इच्छा प्रकट करेंगे तो कश्यप मुनि, हाँ मुझसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं था ना, मैंने क्या क्या समझाया इसको, है ना। तब उनकी आंखें खुलेंगी और फिर वो बोलते हैं कि स्त्रियों का हृदय छुरे के समान होता है, बोलने में इतना मीठा सुंदर लेकिन अंदर क्या छिपा के रखा हुआ है। तो फिर वो कहते हैं कि मुझसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, मैंने क्या समझा इसको। और फिर वो कहेंगे ठीक है, तुम इतने ही मेरे साथ, तुमने मेरे साथ पॉलिटिक्स की, अंदर था क्या और अब मुझे दिखाया क्या। तो वो भी उनके साथ एक ट्रांसडेंटल पॉलिटिक्स करते हैं, बोले ठीक है तुम्हें ऐसा पुत्र मैं दूंगा लेकिन उसके लिए एक व्रत का पालन करना पड़ेगा। तो वो व्रत होता है वैष्णव व्रत होता है, उस व्रत का पालन करते 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 दिति माता का हृदय शुद्ध हो जाता है। और फिर आगे कथा आती है कि जो उनके गर्भ में मरुत होते हैं कैसे एक से वो 49 बनते हैं, ये आगे कथा आएगी। तो ये बहुत ही एक देखिए रोचक प्रसंग है और इससे हमें मालूम चलता है कि बद जीव की प्रकृति के कारण, तमोगुण रजोगुण प्रभाव के कारण वो किस स्तर पे नीचे गिर सकता है, लेकिन अगर उसको किसी ढंग से भगवान की भक्ति में जोड़ दिया जाए तो कैसे उसका उद्धार हो सकता है। तो ये सब इस प्रसंग में था। और एक बार फिर से जैसे हमने प्रवचन के प्रारंभ में बोला था कि कुछ वार्निंग्स जो थी उनको हम याद रखें, इस प्रसंग में किसी भी स्त्री माता जी लोगों के ऊपर कोई जैसे कहते हैं उनका कोई मजाक नहीं उड़ाया जा रहा या उनको नीचे नहीं दिखाया जा रहा। शीला प्रभुपाद भी जब माता जी लोगों से बात करते थे तो कई बार ओपन नहीं बोलते थे प्रभुपाद कि पुरुषों में 64 औंस ब्रेन सब्सटेंस है प्रभुपाद बताते थे और स्त्रियों में 36 औंस है, तो ब्रेन सब्सटेंस कम है, लेस इंटेलिजेंट बताया गया है। तो प्रभुपाद के पास कई वैष्णवी माता आई, बोले क्या है प्रभुपाद ये तो बहुत ही गलत बात है। प्रभुपाद बोला हाँ गलत बात है अगर तुम अपने आप को स्त्री समझते हो, अगर तुम सोचो तुम स्त्री हो तो निश्चित रूप से गलत बात है, हमेशा ही गलत लगेगा। लेकिन आप जीवात्मा हो, आप स्त्री नहीं हो, है ना। स्त्री की देह की ये जिसे कहते हैं ये अवगुण है, जीवात्मा के नहीं है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए, है ना। कई बार भक्ति में आने के बाद भी माता जी लोगों में ये रहता नहीं कि हमें इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, और ये है। और हम देखते हैं अभी प्रभुपाद जी ने तो विदेशों में जाकर स्त्रियों को ब्राह्मण दीक्षा भी दी और विदेशों में तो स्त्रियां आल्टर में जाके पूजा भी करती हैं, अर्चना भी करती हैं, और अब कहीं जीबीसी में भी माता जी लोग हैं और सब प्रवचन देते हैं, सब प्रचार करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पर अवहेलना की जा रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन मालूम होना चाहिए कि कैसे प्रत्येक शरीर की जो हमारे सुविधाएं हमें मिलती हैं उसमें क्या क्या कमियां हैं, तो इसे हम बच कर रहे और भगवान की भक्ति में जुड़कर हम अपने सारे के सारे कमियों को पार कर सकते हैं। माम जो पात विभाचरण, भगवान गीता के 9वें अध्याय में स्त्री वैश्य सदा शुद्ध ते भी अंति पराम गति, और स्त्री वैश्य या शुद्ध कोई भी मेरी शरण में आता है वो परम गति को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। किसी को प्रश्न है या टिप्पणी है? क्वेश्चन सर?
धन्यवाद।
हाँ बोलिए।
धन्यवाद प्रभु जी, बड़ा रोचक प्रसंग था ये। अब प्रभु जी हम लोगों ने एक प्रॉब्लम तो क्रिएट कर लिया अपने लिए शादी करके, अब प्रभु जी इसका सलूशन क्या है?
हाँ जी,
प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गई जब हमने शादी कर ली, अब प्रॉब्लम ये है कि इसका सलूशन क्या है?
हाँ। तो नहीं नहीं इसमें प्रभु जी की विनम्रता ऐसे बोल रहे हैं, प्रॉब्लम ये शादी करके नहीं है, प्रॉब्लम शादी करके बिना ट्रेनिंग के शादी करके। गृहस्थ आश्रम प्रमाणित है और गृहस्थ आश्रम में रहकर हम पूरा भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। चैतन्य महापुरुष के अधिकांशतः पार्षद गृहस्थ आश्रम में थे, और जो 12 महाजनों में से कितने महाजन तो गृहस्थ आश्रम में है, मेजोरिटी गृहस्थ आश्रम है ना। तो ये गलत है सोचना कि शादी करके गलती कर दी, ऐसा नहीं है। गृहस्थ आश्रम में जा रहा है इससे मतलब वो गलती नहीं कर रही है, उसका पतन नहीं हो गया, ऐसा नहीं सोचना। गलती क्या होती है आज के समाज में, गृहस्थ आश्रम में बिना प्रशिक्षण के प्रवेश करना, गृह मेधी बनना निंदनीय है, वो नहीं बनना चाहिए। तो अभी जो पहले से पारिवारिक जीवन में थे बिना प्रशिक्षण के, बिना ज्ञान के, केवल इंद्र तृप्ति के लिए पारिवारिक जीवन में प्रवेश किया, अब हम कृष्णा कॉन्शियस में आए हैं तो अब हम अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं। अब हम समय व्यर्थ ना करें और जो गुरु साधु शास्त्रों का निर्णय है उसके हिसाब से अपने आप को प्रशिक्षित करने का प्रयास करें, है ना। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द ओनली होप, ठीक है ना। पूछ
तो यहाँ देखते हैं कि जैसे रजो और तमोगुण के प्रभाव के कारण की चेतना इतनी गिर गई थी, इन सबके बावजूद प्रभु जी ऐसे जो गुण है प्रकट करना कि दमेना अनुरागेना सुश्रया इतने विनय विनम्रता से, ऐसे कैसे संभव है प्रभु जी ऐसी चेतना में इस प्रकार के गुण को प्रकट करना।
बड़ा अच्छा प्रश्न है इनका कि रजोगुण और तमोगुण प्रभाव में इतना द्वेष भरा हुआ था, फिर भी वो इतनी दीनहीन होकर अपनी इंद्रियों को संयम करके इतनी सेवा कर रही थी, कैसे संभव है। तो ये निश्चित रूप से बात आती है कमिटमेंट की, उनके अंदर इतना कमिटमेंट था कि मुझे कैसा पुत्र चाहिए ही चाहिए कि जो इंद्र का वध कर सके, और वो पतिव्रता थी तो एक पुत्र तो कश्यप मुनि से ही प्राप्त होगा, तो इसलिए किसी ना किसी ढंग से इनका हृदय जीतना है मुझे, है ना। तो इसलिए सब कुछ वो कर रहे थे, वो हर हालत में एक ऐसा पुत्र वो चाहती थी कश्यप मुनि से, इसलिए वो सारे अपने इंद्रियों को भी संयम कर लिया, सब कुछ कर लिया कि वो पुत्र मुझे प्राप्त हो जाए। इतना वो व्यवसात्मी का बुद्धि कह सकते हैं, वो चाहते थे कि मैं ऐसा पुत्र मिले, ठीक है।
गुरु जी जैसे जो आपने समरी बताई थी कथा में, कथा की जो शुरुआत में समरी बताई थी गुरु जी, वो जो दो दक्ष आपने बताया गुरु जी, दो दक्षों के बारे में आपने बताया था गुरु जी,
दो
जो दक्ष प्रजापति, हाँ। दो बार उनका नाम लिया, हाँ। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भागवत में थर्ड कैंटो में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक चक्षुष मन्वंतर के दक्ष है जो शायद कश्यप मुनि होती, और उससे पहले वो स्वयंभू मनु के दक्ष है, तो इनमें फर्क थोड़ा सा
फर्क ये था, जो स्वयंभू मनु समय के जो दक्ष थे जिनको कि बकरे का सिर प्राप्त हुआ था, तो बकरे का सिर लगा के जब कहीं भी सभा में जाते थे बार बार लोग बोलते देखो ये आ गया, इसने शिव जी का अपमान किया था, शिव जी का अपराध किया था, देखो क्या दुर्दशा होगी बेचारे की, ना बकरे का सिला घूम रहा है, तो उनको बहुत शर्म आते थे कि क्या हालत हो गई है मेरी, है ना। तो उन्होंने फिर अपना शरीर त्याग दिया और फिर दोबारा से दक्ष के रूप में आते थे, दक्ष।
तो इसमें बीच में इतना गैप कैसे आया वो स्वयं मनु और चक्षुष मनोवंतर, पूरे सात मनोवंतर का,
हाँ कोई बात नहीं गैप हो गया, ये तो कुछ भी नहीं क्या है इसमें।
धन्यवाद जी, बहुत रोचक प्रसंग था जी। एक चीज है, जैसे अक्सर शास्त्रों में चीज बताई जाती है कि जब स्त्रियां होती हैं वो जैसे अभी आपने बताया वो कमजोर होती, तो कमजोर इन द सेंस ऑफ कि उनकी बेसिकली फिजिकली कमजोर होती, तो माइंड से भी कमजोर होती है, तो कोई भी अगर शरीर और मन दोनों अवस्था से कमजोर होंगे, इसका मतलब शरीर कमजोर इंद्रियां होंगी और मन होगा, शरीर का मतलब इंद्रियां होंगे मन होगा, तो फिर ये तो मतलब जाहिरी बात है, लाजमी बात है कि उसका उसका जो है अपने विचारों पर कोई कंट्रोल नहीं हो सकता क्योंकि वो कमजोर है, उसकी बनावट इस प्रकार से है, तो उस प्रकार से तो इस प्रकार का सोचना जो है तो फिर मतलब नेचुरल हो जाता है, फिर कैसे मतलब इसको देखेंगे कि हाँ इस प्रकार का इस प्रकार की सोच क्योंकि जिसकी इंद्रियों और मन दोनों पहले से कमजोर हैं तो उसके अपने विचारों पर तो कोई कंट्रोल नहीं होगा फिर, तो फिर मतलब क्या कैसे देखें, क्योंकि फिर इसमें तो इनको शायद इतना दोष नहीं दिया जा सकता इस प्रकार से, रादर अगर ऐसे देखा जाए कि उस इनहेरेंट डिफेक्ट के बावजूद जो है शमेना दमना जैसे पैमाने प्रभु ने बताया, तो काफ़ी मतलब सराहनीय बात है कि कमजोर होने का, जो कि पुरुष से अपेक्षा की जाती है कि वह दमेना हो, और इस प्रकार से जैसे आपने बताया कि कश्यप मुनि ने बाद में जो है मतलब अनुशोचना की, अरे मुझे पहले समझना चाहिए था, तो क्या जैसे जैसे बताया कि कोई माता जी इसको समझ नहीं सकता सबने बताया, तो क्या ये माता जी इस पर भी लागू होती है, शास्त्र क्या कहते हैं इस बारे में कि क्या माता जी इसको समझ सकती हैं, पुरुष तो माता जी को नहीं समझ सकती, ये तो क्लियर हो गया, तो क्या माता जी इसको समझ सकती हैं, शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं
जी। अच्छा प्रश्न है और बड़ा अच्छा इनका विचार, इन्होंने टिप्पणी दी कि बताया गया है कि जो स्त्री का देह है उसमें बहुत फिकल माइंडेड होती है और एक बात स्थिर नहीं रह पाते और बहुत ही जैसे कहते हैं विचारों पे भी उनको नियंत्रण नहीं है, तो इसलिए उनकी ये नेचर है ऐसे, और बहुत सेंटिमेंटल है तभी, है ना। तभी देखा पिछले प्रसंग में माता पार्वती ने बिना प्रतीक्षा के चित्रकेतु को शाप दे दिया, लक्ष्मी माता भृगु मुनि को शिला शाप दे दिया, है ना, तो बहुत सेंटिमेंटल है और एक बार थोड़ा सा भी कोई उनके प्रति अपराध करते हैं वो सहन नहीं कर पाते। हम गली मोहल्लों में भी देखते हैं कि दो स्त्रियां कैसे लड़ रही होती हैं छोटी छोटी बात में, कि तूने ये कर दिया, तूने ये कर दिया, तूने मेरे बेटे को ऐसा क्यों देखा, ऐसा क्यों किया, है ना। कितनी कितनी लड़ाइयां हम देखते हैं आसपास मोहल्लों में भी, है ना, और घर घर में भी देखते हैं, देवरानी जेठानी सास बहू में कितनी लड़ाइयां होती हैं। और ऐसा बताया कि कभी भी ये ऐतिहासिक है, कभी शांति हो ही नहीं सकती ऐसे स्थान पर। तो क्यों है, बिल्कुल सही बात बताया इन्होंने कि उनके अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं है, ये कमजोरी है। उसके बाद भी दिति माता ने अपने इंद्रियों को संयम करके अपने शरीर से भक्ति से इतनी सेवा की, वास्तव में सराहनीय है, वास्तव में सराहनीय है। और जैसे एक पुरुष स्त्री की प्रकृति को नहीं समझ सकता, स्त्री भी स्त्री प्रकृति को नहीं समझ सकती। अगर समझ लेते तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती। तो क्योंकि हम देखते कभी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई नहीं, और दो बहनों में भी आपस में कॉम्पिटिशन है, दिति और अदिति दोनों बहने हैं, लेकिन वो कितना आपस में कंपटीशन है ना। कुंती महारानी इतनी एलिवेटेड है, वो भी माद्री से कंपटीशन कर रहे हैं ना, तो इसलिए वो समझ नहीं पाती एक दूसरे की नेचर को, और फिर अपने स्वार्थ को आगे रख के इस ढंग से प्रेरित होते हैं। ठीक है ना, ठीक है। लास्ट प्रश्न है,
इसी थिंकिंग की ये मेरा नेचर है, मैं ऐसा हो सकता है मेरे साथ, और इससे थिंकिंग कि मतलब सच में जलन की वजह से नहीं किया मैं।
वो बोल रही है सच में जलन की वजह से नहीं कर रहे, उन्होंने एडमिट किया कि मैं नहीं कर सकती,
या फिर जनरली जो मूड से ऊपर होता है, ही थिंक्स दैट कि उसे पता होता है कि ये होगा तो मेरे साथ
नहीं, से इसी ढंग से हम देखते हैं उनको। धृतराष्ट्र की जो भार्या थी, पत्नी थी, गंधारी को जैसे मालूम चला कि कुंती गर्भवती हो गई है, उसने अपने पुत्र उत्पन्न हो गए हैं, तो अपने उसमें जो भी गर्भवती थी अपने घर को पीटा, उसके 100 टुकड़े कर दिए, इतनी ईर्ष्या कि उसके पुत्र क्यों हो गए, इतनी ईर्ष्या है ना। और ये गंधारी बहुत एलिवेटेड थी फिर भी इतनी ईर्ष्या थी। तो ये नेचर है, इस बात को समझना है, तो नेचर है, वेरी सेंटिमेंटल फिकल माइंडेड। तो इसलिए माता के लोगों को जाना चाहिए, और इस कारण से अपनी भक्ति में और दूसरों की भक्ति में बाधा ना पड़े। आगे जाके श्लोक में आएगा कि ब्रह्मा जी ने स्त्रियों की रचना क्यों की, कि पहले सृष्टि में सब लोग बिल्कुल अनासक्त थे, तो जनसंख्या बढ़ाने के लिए स्त्री को भेजा गया। तो स्त्रियों को इस ढंग से एक माया की प्रतिनिधि इस ढंग से है कि वो जो लोग आत्म साक्षात के पथ पर अग्रसर है उनको भगवान से मोहित करे, अपने सुंदर स्वभाव से और अपने सुंदर भाषा से, चेहरे से। लेकिन बाद में ये प्रकृति ऐसे है कि इनको खुद का भी पतन होता है, और जो उनसे आकर्षित होता है उसका भी पतन होता है। तो इस बात को पुरुष भी समझें, स्त्री भी समझें, और अपने आप को एलिवेट करने के लिए कृष्ण को केंद्र में लाएं। शारीरिक आकर्षण में हमेशा अमंगल ही अमंगल है। ठीक है, तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।